हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज के भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त उपस्थित है, शिष्टाष्टकम प्रभु। शिष्टाष्टकम प्रभु आपसे लगभग 2 साल पहले आए थे इसी मंदिर में, बहुत सुंदर प्रवचन दिया था, शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा। अभी ये अपने इस्कॉन यूथ सर्विसेज के 300 भक्तों के साथ वृंदावन में आए हुए थे, तो हमें सौभाग्य मिला इनका संग प्राप्त करने का। प्रभु जी इस्कॉन नासिक के प्रेसिडेंट हैं और 1998 में इन्होंने इस्कॉन चौपाटी में अपने जीवन को समर्पित किया श्री प्रभुपाद जी के मिशन में। उससे पहले 4 साल ये दिल्ली में रहे, 1994 से 1998 में ये एयरफोर्स में जॉब कर रहे थे और इनको प्रमोशन मिला पायलट बनने के लिए, तो उन्होंने सोचा पायलट बना जाए प्रभुपाद जी के आंदोलन में। तो इस पायलट के ऑफर को छोड़कर ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में फुल टाइम ज्वाइन किया और तब से बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभुपाद के मिशन में कर रहे हैं। ये 7 साल तक परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज के पर्सनल सेक्रेटरी रहे और उनकी सेवा की, उसके बाद ये इस्कॉन नासिक के प्रेसिडेंट हैं। प्रभु जी पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपने बहुत ही सुंदर गहरे और विनोदी स्वभाव के लिए और प्रवचनों के लिए, और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गेटिंग इन्विटेशन। प्रभु जी यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड में जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉरपोरेट सेक्टर में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर प्रवचन देते हैं। और कहा जाता है कि कृष्ण कथा विशेषकर दामोदर लीला और गिरिराज लीला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर कथा करते हैं। तो हमारा परम सौभाग्य आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और साथ में यहाँ की बहन जो सीमंत द्वीप माता जी यहाँ पे आई हैं इनके साथ, तो इनका भी स्वागत करते हैं इस मंदिर में। आप सब भक्तों से निवेदन है कृपया करके अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे कर दें और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसलिए शिष्टाश्रम के मुखारविंद से भागवत पाठ सुनें। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय क्रमांक 15 श्लोक 32 से लेकर 34। श्लोक क्रमांक 32। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण किया और वे स्वर्गलोक को छोड़कर असुरों की सृष्टि से ओझल होकर तिथर बिथर हो गए। जब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। श्लोक क्रमांक 34 जिसका तात्पर्य है और जिसे हम गाएंगे, तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन मेधानां अनुव्रतम् अयाजयन् तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः शतेन हयमेधानां अनुव्रतमयाजयन् तं विश्वजैनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः। तं उस बलि महाराज को विश्व जैनम समग्र विश्व के विजेता को शिष्यम शिष्य होने के कारण भृगव भृगुवंशज यथा शुक्राचार्य के शिष्य वत्सला शिष्य से अत्यंत प्रसन्न होकर शतेन 100 के द्वारा हय मेधा नाम अश्वमेध यज्ञों के अनुव्रतम ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करते हुए अयाजयन संपन्न कराया। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। तात्पर्य, महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहा तो इंद्र उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बने थे। यहां पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराज बलि इंद्रासन पर विराजमान हैं, तथापि वे तब तक उस पर स्थिर नहीं रह सकेंगे जब तक वे यज्ञ न कर लें। अतएव उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ करें। अयाजयन शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ना आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपनी कृतज्ञता रुक्मणी कृष्ण प्रभु और आप लोग सब जो पिछले 2 साल में मैं इतना जो सुनते आया हूँ। मैं मेरी लास्ट विजिट के पश्चात आप लोगों के मंदिर के विषय में और यहाँ पर जो विशेष मूड है आप लोगों का, 2 साल पहले जब मैं आया था तो आप लोगों का उत्साह और आप लोगों का प्रेम वो अब तक मुझे याद है, जैसे कि कोई सीढ़ी को पॉज बटन आप दबा दो और वहाँ से फिर, तो 2 साल पहले वो पॉज बटन दबा था और अभी वो पॉज बटन रिलीज हुआ है, और वही उत्साह और वही प्रेम आप लोगों का यहाँ पर मैं अनुभव कर रहा हूँ। जैसे कल मैं सत्संग कार्यक्रम में कह रहा था कि ऐसे मंदिरों और ऐसे सत्संग कार्यक्रमों में मैं आता हूँ इंस्पायर होने के लिए, तो यहाँ पर विशेष रूप से आप लोगों के संग में कुछ इंस्पिरेशन मिले और सेवा का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है, इससे बड़ी बात किसी साधक के लिए, मुझ जैसे स्ट्रगलिंग साधक के लिए और क्या हो सकती है। हरे कृष्णा। ये जो 8वां स्कंद है जहां बलि महाराज ये मुख्य अपना अभिनय निभा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसे ऐसे भगवान के शरणागत भक्त हुए हैं कि बाह्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए या वर्णाश्रम दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो हमारे गणित में फिट नहीं होंगे, हमारी बुद्धि के गणित में फिट नहीं होंगे। जैसे वृत्रासुर, अब नाम से ही पता चलता है असुर हैं वो, परंतु श्रील प्रभुपाद जब वृत्रासुर प्रसंग में अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि एक तरफ है देवराज इंद्र और उनको क्या ख्याति प्राप्त हुई है, जैसे हमने कहा देवराज देवताओं के राजा, और यहां पर वृत्रासुर, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने फिर देवराज इंद्र और पृथु महाराज उनका उदाहरण दिया है। तो यहां पर बलि महाराज और किनके वंशज हैं वो, प्रह्लाद महाराज, और ये वंश परंपरा किसकी है, हिरण्यकशिपु की। हिरण्यकशिपु के वंशज, परंतु भगवान जब कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूं, तो ये जो भागवत का सिद्धांत है, जैसे कि भागवत में ही बताया गया है कि क्रांति लाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, बहुत से कारणों में से ये कारण है कि हमारे जीवन में क्रांति लाने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, टू ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द ह्यूमन सोसाइटी। तो जब हम क्रांति की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वो नॉर्मल सी जिसका हम अनुभव करते हैं उससे हटकर उसकी विवेचना की जानी चाहिए। इसलिए जो हमारी मनोधारणा होती है, जिस तरीके से हम साधारणतः सोचते हैं, श्रीमद् भागवत हटकर हमें एक सोच दिलाता है। जैसे हम सब कृष्ण भक्ति में आने से पहले भी भगवान श्री कृष्ण को जानते थे, और श्रीमद् इस्कॉन में आने से पहले भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से जानते थे, हाँ भाई एक नटखट गोपाल, माखन चोरी करने वाले, रासलीला रचाने वाले, भगवद गीता उन्होंने सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा हुआ अच्छा हुआ, गीता का सार बस उतना ही तक सुना था। यहां आने के बाद फिर जिसको कहते हैं कि 360 degrees हमको पूरा पलट दिया श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत इस आंदोलन के अंदर, और फिर जब भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानना प्रारंभ किया तब समझ में आया कि भाई ये तो एक ऐसा अथाह सागर है, हम तो जिसके छोर पर खड़े थे केवल, हमने तो इस समंदर में प्रवेश भी नहीं किया। तो यहां पर बलि महाराज हालांकि हिरण्यकशिपु के वंशज, परंतु बलि महाराज का गुणगान हुआ है कि
कि वो आचार्य बने आत्मनिवेदन के,
जो नवदा भक्ति में जो अंतिम नवम भक्ति का अंग है आत्मनिवेदन, अर्थात अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये जो हिंदी का शब्द है बलिदान, ये बलि महाराज से ही इसकी उपज है। कितना कॉमन वर्ड है बलिदान, परंतु इसके पीछे का इतिहास है कि बलि महाराज ने जो दान दिया, जो बलि महाराज ने दान दिया, वहां से ये हिंदी का शब्द बना है बलिदान। और जब हम कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, तो जो बलिदान कृष्ण भक्ति या एक कृष्ण भक्त से अपेक्षित है, उसका जो स्टैंडर्ड, वो जो मापदंड है, वो जो भगवान ने एक बार रख दिया है कृष्ण भक्तों के लिए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में कह दिया, आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टुं मां, श्रीमती राधा रानी का भाव है ये, जो अंतिम श्लोक है शिक्षाष्टकम का, उसके अंदर मतलब धीरे 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 धीरे, जिसको ऑर्केस्ट्रा में कहते हैं ना क्रेशेंडो, कि एक हाई पॉइंट आता है ऑर्केस्ट्रा का, जहां पर वो जो ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है वो उस ऑर्केस्ट्रा को क्रेशेंडो पर ले आता है, पिनकल, जेनिथ। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने राधा रानी के महाभाव में, अपने उन आठ पदों में, उस ऑर्केस्ट्रा को, हरिनाम संकीर्तन परम विजयते, उस ऑर्केस्ट्रा को क्रेशेंडो पर लाए आश्लिष्य वा पादरतां, उस श्लोक के द्वारा अल्टीमेट सरेंडर, जहां पर श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है कि हे श्याम सुंदर, आप यदि जो चाहो मेरे साथ आप कर सकते हो, आप यदि आलिंगन करो वो मुझे स्वीकार है, आप मुझे दुर्लक्ष कर दो, आप मुझे ठुकरा दो। अब देखो, जब कोई किसी को ठुकराता है उसमें भी कम से कम कंसिडर कर रहा है, ठुकराने के योग्य बन रहा है व्यक्ति, उसको कुछ कंसिडरेशन दिया जा रहा है। परंतु श्लोक में श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि इवन इफ यू आर इंडिफरेंट, आप उदासीन बन जाओ, यदि किसी के प्रति आप इंडिफरेंस दिखाओ तो उससे ज्यादा इमोशनल अटैक किसी रिलेशनशिप में कोई नहीं कर सकता। प्रेम करना और क्रोध करना, इन दोनों में उस व्यक्ति को कुछ तो वैल्यू दी जा रही, परंतु इंडिफरेंस, उदासीन हो जाना कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, इससे बड़ा अटैक इमोशनली किसी रिलेशनशिप में कोई कर ही नहीं सकता। तो श्रीमती राधा रानी ने उसको भी इंक्लूड कर लिया, यदि आप चाहो तो आलिंगन करो, यदि आप चाहो तो ठुकरा दो, यदि आप उदासीन बन जाओ, परंतु आप मेरे प्राणनाथ बने रहोगे। तो बलिदान, हम लोग उदाहरण लिए श्रीमती राधा रानी का, जब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा, और बहुत से कारण थे उद्धव जी को वृंदावन भेजने का, जब भगवान वृंदावन छोड़ चुके थे, तो उद्धव जी के मन में एक थोड़ा सा गर्व आ गया था कि मुझे भगवान इतना निकट का एक पार्षद मानते हैं, और धीरे धीरे उनको लगने लगा था कि शायद मुझसे ज्यादा निकट और कोई है नहीं। तो भगवान उद्धव जी को एहसास दिलाना चाहते थे, एक नमूना उनको उनके सामने पेश कराना चाहते थे, ब्रज भक्ति, विशेष रूप से जो गोपियां हैं उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए ये मुख्य कारण उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं। तो वहां पर अब
इतने बड़े ये विद्वान बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी जाते हैं वृंदावन और वहां पर बहुत कुछ होता है, परंतु मुख्य श्रीमती राधा रानी की हम चर्चा कर रहे हैं, उनके बलिदान का जो स्वरूप है। अक्सर हम श्रीमती राधा रानी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हाँ श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण की सहचरी हैं सबसे निकट, कि उनके जो गोपी हैं और उनके साथ जो रासलीला रचाती है, परंतु उनके जो बलिदान हैं उसके विषय में बहुत कम उसकी चर्चा होती है। तो उद्धव जी जब श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं और श्रीमती राधा रानी को उस भाव विभोर अवस्था में देखते हैं, तो उनको भेजा गया है सांत्वना देने के लिए। भगवान उद्धव जी को कहते हैं आप जाकर उनको सांत्वना देना। तो अब भाई एक मिशन के साथ गए हैं, एक तो शास्त्र में मर्मज्ञ हैं और फिर भगवान ने भेजा है उनको सांत्वना देने के लिए, तो ठीक है बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए सांत्वना देने के लिए, तो किसको दे रहे हैं सांत्वना? श्रीमती राधा रानी को सांत्वना दे रहे और कहते हैं कि भाई ये जो श्याम सुंदर कृष्ण के लिए आप जो इतना विलाप कर रहे हो, ये तो सब जगह पर मौजूद है, ये सर्वव्यापी है। तभी उन्होंने अपनी विद्वत्ता सामने पेश की। तो राधा रानी को ये सब जो विद्वत ज्ञान इन सब से वो बहुत परे हैं। तो उद्धव जी ने देखा कि भाई यहां पर दाल नहीं गल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा शायद इनको, तो फिर वो एक अलग तर्क लगाते हैं और वो कहते हैं कि आप उस श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति इतना विलाप कर रहे हो, परंतु बदले में वो श्याम सुंदर कृष्ण ने आपको दिया क्या, छोड़कर चले गए, तो यदि न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाए संबंधों में यदि आदान प्रदान नहीं दिखता तो फिर धीरे धीरे वो संबंध जो है वो अपने नेचुरल डेथ को पाते हैं। तो जिन श्याम सुंदर ने आपको छोड़ दिया, आप इतना उस व्यक्ति के विषय में क्यों शोक ग्रस्त हो? तो जब ये वाक्य उद्धव जी ने श्रीमती राधा रानी से कहा, तो राधा रानी ने अब बोलना प्रारंभ किया। अब तक श्रीमती राधा रानी बोल नहीं रही थी, फिर अब बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने पांच प्राणियों के उदाहरण दिए और पांच प्राणियों के उदाहरण से श्रीमती राधा रानी ने उद्धव जी को समझाया कि एक तरफ है ये पांच प्राणी जिनकी वफादारी वो दिखाते हैं और एक तरफ मैं और मेरे श्याम सुंदर और आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो उनकी वफादारी और मेरी वफादारी उनके प्रति। तो सबसे पहला उदाहरण श्रीमती राधा रानी देती हैं पतंगा। आप लोग जानते हैं पतंगा, बारिश के मौसम में अक्सर ये दिखते हैं और लालटेन हो या मोमबत्ती आप जलाओ तो उस मौसम में, इंग्लिश में इसको मॉथ बोलते हैं। तो ये पतंगा जो है, हमने सुना है कि पतंगे की वफादारी किसके प्रति होती है? लॉ के प्रति। वो जो मोमबत्ती की लॉ है उसके प्रति उस पतंगे की वफादारी इतनी होती है, श्रीमती राधा रानी कहती हैं, जैसे कि जब कोई किसी आराध्य की परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है उसको मध्य में रखते हुए, वैसे ही ये पतंगा जो उसको आराध्य मानता है, किसी इस लॉ को आराध्य मानता है, तो परिक्रमा करने लगता है और परिक्रमा करते करते ये पतंगा इतना ज्यादा भाव विभोर अवस्था में चला जाता है कि उस अग्नि में प्रवेश कर जाता है और अपने आप को झुलसकर मार डालता है। और इतना ही नहीं, अन्य पतंगे देखते हैं कि जो हमारा साथी है अभी अभी जलकर मर गया है उस अग्नि में, जिस अग्नि के लिए उसने इतनी वफादारी इतना प्रेम दिखाया दर्शाया, उसी अग्नि ने जलाकर मार डाला इस पतंगे को। अन्य पतंगे देखते हैं और वो क्या करते हैं, वो भी वही करते हैं, वो भी उसी पतंगे के पत्तियों पर चलते हुए वो अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, उस अग्नि में झोंक देते हैं। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि यदि एक पतंगे के अंदर इतनी वफादारी हो सकती है अग्नि के प्रति, और आप मेरी वफादारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। दूसरा उदाहरण वो देते हैं हिरण का। हिरण को जब शिकारी पकड़ने जाता है तो जानता है कि ये हिरण इतना चुस्त प्राणी है कि मैं तीर भी चलाऊंगा तो मेरा तीर वो निशाने पर नहीं लग पाएगा, मैं निशाना नहीं साध पाऊंगा, ये हिरण इतना चुस्त प्राणी है। परंतु उसकी वीकनेस क्या है उस हिरण की, जब कोई बहुत मधुर मुरली बजाता है तो वो हिरण उसे सुनने के लिए रुक जाता है, बहुत वो आसक्त है मुरली की ध्वनि से ये हिरण। तो शिकारी तीर निकालने से पहले मुरली निकालता है और मुरली बजाता है, और उस मुरली वादन को सुनकर वो हिरण जो इतना चुस्त प्राणी है एक जगह पर स्तब्ध खड़ा रह जाता है। और तब जब वो खड़ा है शिकारी वो अपना तीर निकालता है, तीर चलाता है उसके ऊपर, और ये हिरण जानता है कि ये मुरली इस शिकारी ने ही बजाई थी और मुझे रोकने के लिए और मुझे मारने के लिए इसकी साजिश थी, ये साजिश हेतु मुझे मारा है इसने। परंतु मरते मरते वो हिरण उस शिकारी से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने छिपकर साजिश द्वारा मुझे मारा है, परंतु मेरी एक ही प्रार्थना है हे शिकारी तुमसे, मरने के पश्चात मेरी जो खाल है वो किसी और वाद्य को बनाने में लगाना, लेट द म्यूजिक गो ऑन। ये वफादारी हिरण की होती है संगीत के प्रति। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि यदि एक हिरण जैसा साधारण प्राणी इतनी वफादारी दिखा सकता है और मेरे सामने प्रश्न चिन्ह रख रहे हो। तीसरा उदाहरण श्रीमती राधा रानी देती हैं चकोर पक्षी का। चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा से प्रेम करता है, हर समय उपमा दी जाती है कि चकोर का चंद्रमा। तो चकोर हर समय प्रतीक्षा में रहता है कब पूर्ण चंद्र का उदय होगा पूर्णिमा के दिन, और जैसे ही पूर्ण चंद्र उदय होता है चंद्र को कोई सरोकार नहीं उस चकोर से, पता नहीं कितने चकोर देखते होंगे उस चंद्रमा को, परंतु चंद्रमा वो कोई मूल्य नहीं देता इन चकोरों को। परंतु ये जो चकोर हैं ये अपना पूरा जीवन उस चंद्रमा पर न्यौछावर कर देते हैं। कौन सा चंद्रमा, वो चंद्रमा जिसे कोई सरोकार नहीं है इन चकोरों से। और जब ये चंद्रमा ये आकाश मंडल में पूर्ण चंद्र जब अपनी यात्रा प्रारंभ करता है रात्रि के समय, तो चकोर अपनी गर्दन और अपनी नजर एक टक चंद्रमा पर लगाए रखता है पूरे रात भर, और कई बार उसकी गर्दन अटक जाती है उस चंद्रमा की यात्रा को एक टक देखते हुए। परंतु वो चकोर अपनी वफादारी नहीं छोड़ता। चौथा उदाहरण चातक पक्षी का देते हैं। हमने सुना है चातक पक्षी, जब भी चातक पक्षी वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है तो केवल जो बादलों से, और वो भी स्वाति नक्षत्र में, वर्षा ऋतु में जो स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें पड़ती हैं डायरेक्टली अपने चोंच से अंदर लेता है, चाहे कितने भी उस ऋतु में जलाशय सरोवर भरे हों शुद्ध जल से, परंतु वो चातक कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, स्टैंडर्ड बहुत हाई है उसका। प्योरिटी देखो क्या लेवल की प्योरिटी उस चातक के स्टैंडर्ड की है कि वो वर्षा ऋतु पूरे साल भर निर्जला करे, एक दिन निर्जला हमसे जान पर आता है हमारे पर, यहां पर ये साल भर निर्जला और ब्रेकिंग के लिए, फास्ट ब्रेकिंग के लिए वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र में जो उस बादल से वर्षा की बूंद प्योर द मोस्ट प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर उसी को ग्रहण करेगा। और अक्सर श्रीमती राधा रानी ने उदाहरण दिया, अक्सर यह देखा जाता है कि वही बादल जिससे इस चातक पक्षी ने इतना प्रेम किया, पूरे वर्ष भर प्रतीक्षा करी, वही बादल उस वर्षा के बूंदों से पहले बिजली उसके ऊपर डालता है और कई चातक उस बिजली की वजह से मर जाते हैं, परंतु अन्य चातक को अपनी वफादारी नहीं छोड़ते। किसके प्रति? उस बादल के प्रति। और हे उद्धव, आप मुझे मेरी वफादारी को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। और फिर पांचवा उदाहरण वो देते हैं मीन, मछली का। मछली जो अपना पूरा जीवन उस सरोवर में बिता देती है या उस नदी में बिता देती है, उस समंदर में बिता देती है, जल के साथ जो संबंध मछली का है एक प्रकार से अभिन्न, तो मछली और जल इन दोनों की दोस्ती। जब मछुआरा जाल फेंकता है, उस मछली को पकड़ने के लिए जब मछुआरा उस सरोवर में आता है, जलाशय में प्रवेश करता है, जब जाल फेंकता है, तो जीवन भर जो ये एक साथ रहे, कौन? जल और मछली एक साथ रहे। इस मछुआरे के जाल को देखते ही उस मछली को सबसे पहले कौन छोड़ता है? वो जल। जब वो जाल को ऊपर खींचता है मछुआरा, तो जल उस मछली को छोड़ देता है, फिर से वो जलाशय में चला जाता है। और वो तड़पती हुई मछली उस जाल में कुछ क्षण अब तक जीवित है, तड़प रही है। तड़पती हुई मछली किस लिए तड़प रही है? फिर से उसी दगाबाज जल में जाने के लिए, जिसने अभी अभी दगा दिया है इस मछली को। वो तड़प रही है फिर से उसका संग करने के लिए। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि यदि एक साधारण सी मछली जिस जल ने अभी अभी उस मछली को दगा दिया, उस दगाबाज जल के प्रति यदि वो मछली इतनी वफादारी दिखा सकती है, तो मैं मेरे श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति अपनी वफादारी क्यों नहीं दिखा सकती? उद्धव जी ने साष्टांग दंडवत किया, यू टर्न लेकर लौट गए, भगवान श्री कृष्ण को कहा राधे राधे। कहते हैं ना, मान गए उस्ताद। अब ठीक है, श्रीमती राधा रानी तो बहुत ऊंचा स्तर है उनका। जब हम हमारे स्तर पर, अब हम ग्राउंड लेवल पर आते हैं, हमारे स्तर पर जब हम कृष्ण भक्ति में अपने आप को जोड़ते हैं, तो वफादारी, लॉयल्टी जिसे कहते हैं, फिडेलिटी, ये सारे जो शब्द हैं, ये एक साधक के प्राणधन है, लाइफ एंड सोल। This is like the life breath for a sadhak, loyalty for Krishna. तो इसके संदर्भ में हमें सबसे पहले यह समझना है कि मैं कृष्ण भक्ति क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। Why have I come to Krishna consciousness? If your why coming to Krishna consciousness will be clear, then your how to please Krishna will be deeper. अक्सर हम लोग जब ये how वाले questions पूछते हैं ना, how to chant, how to please Krishna, उससे पहले कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? Why to chant? मैं हमारे एक रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में सत्संग में कह रहा था, कि मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन हमारा कौन से स्तर पर है, ये समझ में आ जाएगा कैसे, हमारे क्वेश्चंस के लेवल क्या है, क्या लेवल के क्वेश्चंस हम पूछते हैं, उससे समझ में आ जाएगा हमारा ह्यूमन प्रोग्रेस कौन से लेवल का है। तो मैं उदाहरण दे रहा था, हमारे चौपाटी कांग्रीगेशन के एक डिवोटी, उन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे पर उस बच्चे को एक वीडियो गेम गिफ्ट किया, नया वीडियो गेम मार्केट में आया था, अपने बच्चे को गिफ्ट किया। उस लड़के ने वीडियो गेम पाते ही स्पॉन्टेनियस उसका क्वेश्चन क्या था, पापा कैसे खेलते हैं सिखाओ। क्या क्वेश्चन था, पापा कैसे खेलते हैं सिखाओ, हाउ शुड आई प्ले दिस। उसी पापा ने एक महीने बाद मंदिर से बीडबैग लेकर आए बच्चे के लिए, छोटी बीडबैग, और बीडबैग लाकर दिया। अब स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन क्या था बच्चे का, क्यों। जब वीडियो गेम दिया था तो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन क्या था, कैसे। जब चैंटिंग की जपमाला दी तो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन था, क्यों। ये जो क्यों और कैसे के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यदि मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूं कि क्या आप में से कोई कीर्तन में इतना ऊपर कूद सकता है, या फिर ऐसे ही इतना ऊपर कूद सकता है कि आप ये शैंडेलियर को टच कर लो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो क्वेश्चन पूछेगा, क्यों क्यों करना है भाई अचानक ये पागल बनते का कार्य, अच्छा गलत सा क्लास चल रहा है, आप बोल रहे हो अचानक खड़े होके शैंडेलियर को कूद के टच करो। एक कोई इंटेलिजेंट होगा उसका स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव क्वेश्चन क्या होना चाहिए, व्हाई। अब मैं आपको एक दूसरा प्रस्ताव सामने रखता हूं, दूसरा प्रस्ताव यह है कि मेरे पास एक नुस्खा है, एक हफ्ते में आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अब क्या क्वेश्चन होगा, कैसे, है ना, स्पॉन्टेनियसली क्या क्वेश्चन सामने, कोई किसी ने ये क्वेश्चन पूछा सामने, क्यों। कोई अगर ये क्वेश्चन पूछता है क्यों 1 करोड़ रुपए एक हफ्ते में कमाने हैं तो उसको पागल करार दिया जाएगा। तो जब कूद कर शैंडिलियर को टच करने की बात आई तो हमने वहां पर हमारी बुद्धिमानी लगाई और प्रश्न पूछा कि क्यों करना है वो। लेकिन 1 करोड़ रुपए कमाने का जब प्रस्ताव सामने सुना तो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन कैसे। उसी प्रकार से जब हमको हमारे गुरुजन कृष्ण भक्ति में कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमारा प्रश्न उस समय उस प्रकार का होता है कि भाई क्यों करना चाहिए, व्हाई। अर्जुन ने भगवद गीता में यह क्वेश्चन नहीं पूछा, हाउ टू फाइट द वॉर। अर्जुन ने भगवद गीता में क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाई टू फाइट द वॉर। और हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर हम सही कॉन्टेक्स्ट में पूछें तो, जैसे कि श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई 16 राउंड्स। श्रील प्रभुपाद ने उस प्रश्न पर एक और प्रश्न, Why not chant 16 rounds? Prabhupada ने बोला, You have the question, why chant 16 rounds? I have a question, why only 16 rounds? तो जब हम एक हमारे जो भी सुकृति के वजह से या संघ के वजह से जब हम ये न प्रकार भगवान के भक्तों से जुड़ते हैं तो सिक्स लेवल्स हैं, सिक्स लेवल्स हैं भगवान से जुड़ने के, या हम कृष्ण भक्ति में भगवान से जुड़ते हुए इस रिश्ते में प्रगति कर रहे हैं इन अलग अलग लेवल से गुजरते हुए। तो इसको यदि मैं इस प्रकार से प्रस्तुत करूं आपके सामने कि सिक्स सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहला फर्स्ट सर्कल, उसके अंदर का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, और सिक्स्थ जो है जैसे कि जैसे कमल का कोश होता है, द वर्ल ऑफ लोटस फ्लावर, सबसे बीच वाला, वैसे जो इनर मोस्ट है वो सिक्स्थ सर्कल है, परंतु जो आउटर मोस्ट है वो फर्स्ट सर्कल कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है। ये सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कृष्ण, और हम लोग सब आते हैं इस क्वेश्चन को लेते हुए, कृष्ण कौन है, क्या है। तो यहां पर क्या प्रारंभ हो रहा है, यहां पर ज्ञान। हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के तत्व का ज्ञान अर्जित करते हैं। When you come to know what is Krishna, उस ज्ञान के आधार पर हम सेकेंड सर्कल में प्रवेश करते हैं। ये जो सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो है I like Krishna. You will like Krishna only when you know Krishna. And that is true for anyone for that matter. बिना किसी को जाने आप उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए what is Krishna follows by I like Krishna. Once you like Krishna, then I trust Krishna. ये third circle है. You will start trusting Krishna consciousness. अब थोड़े विश्वास जागृत होने लगता है भगवान के ऊपर कि हाँ भाई, इन्होंने जो कुछ भगवत गीता में सुनाया है, जो कुछ ये निर्देश इन्होंने दिए हैं मेरे उद्धार के लिए, मुझे उस पर विश्वास होते जा रहा है। आई ट्रस्ट कृष्ण। वेन यू ट्रस्ट कृष्ण, यू एंटर इन टू द फोर्थ सर्कल, आई वॉन्ट टू फॉलो कृष्ण। और फिर हम प्रारंभ करते हैं, जब माला हाथ में लेते हैं, चार नियम, मंगल आरती, मंदिरों में आना, सत्संग कार्यक्रम, ये सब कुछ फॉलो करना प्रारंभ करते हैं। तो ये कौन सा है, ये फोर्थ सर्कल, आई वॉन्ट टू फॉलो कृष्ण। फिफ्थ सर्कल है माई लाइफ इज कृष्णा नाउ। अब बस फॉलो करने के बाद मंदिर के बाहर भी जाते हैं तो फोन भी उठाया, हरे कृष्णा, गाड़ी भी ऑन करी, नरसिंह चतुर्थ अपना नरसिंह आरती गाना शुरू करते हैं, जहां कहीं पर भी वहां पर कृष्ण कृष्ण, माय लाइफ इज कृष्ण। परंतु जो फाइनल इनर मोस्ट सर्कल है वो है माय मिशन इज कृष्ण। अब न केवल मुझे जो लाभ प्राप्त हुआ है, न केवल मैं उसमें संतुष्ट रहूं बल्कि मैं अन्यों को बांटू, जैसे कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है। इसलिए एक साधक का जो जीवन है, जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम होता है, आप लोगों ने, आप लोग करते भी होंगे, सुना भी होगा, अनुलोम विलोम जानते हैं आप। प्राणायाम में अनुलोम विलोम जब करते हो तो आप इनहेल पहले करते हो, आपके लंग्स को ऑक्सीजन से भरते हो, यू होल्ड इट एंड देन यू रिलीज। तो एक साधक का जीवन अनुलोम विलोम तरह है, क्या है, 9 बजे तक श्रीमद् भागवतम क्लास क्या है, इनहेलेशन, और 9 बजे के बाद प्रीचिंग क्या है, एक्सहेलेशन। इफ यू कीप इनहेलिंग 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 एंड डोंट एक्सहेल, क्या होगा, यू विल डाई। And you can't exhale without inhaling. So this is the perfect combination for a sadhaka. इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमारी औकात क्या है, नहीं तो तब तक हम अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा मानते थे। सो द फर्स्ट थिंग इज वी रिकॉग्नाइज अवर सिचुएशन एंड ऑल्सो वी रिकॉग्नाइज द मर्सी ऑफ कृष्णा अपॉन अस इवन दो वी आर सो अनक्वालिफाइड। तो ये है रिकॉग्निशन स्टेज। उसके पश्चात व्हेन यू रिकॉग्नाइज यू से थैंक यू टू श्री श्री राधिका रमण। व्हाट यू से? यू से थैंक यू। मेरे लास्ट यूके ट्रैवल में एक नया बंदा फर्स्ट टाइम प्रोग्राम में आया, ब्रिटिशर, वो मुझे पूछता है जस्ट टेल मी इन जस्ट फ्यू वर्ड्स व्हाट इज दिस चैंटिंग। तो बिल्कुल नया ब्रिटिशर है, तो मैंने उसको कहा चैंटिंग हरे कृष्णा मीन्स सेइंग थैंक यू टू द सुप्रीम लॉर्ड। You get so much from the Supreme Lord all throughout the day, all throughout your life. हम अभी सांसें ले रहे हैं, क्या हम अपने साथ लेकर आए थे ऑक्सीजन के सिलेंडर? पैदा हुए थे तब। जो भी कुछ हमारा जो जीवन यापन जब चल रहा है, ये सब कुछ उनके बलबूते पर है। तो सबसे बेसिक यदि हम समझना चाहें, चैंटिंग हरे कृष्णा शुड बिगिन विद saying thank you to the Supreme Lord. That is called recognition. Second is remember. Remember that this mercy we have been given in the past also, in the present also, and will be given in the future also. और जब हम इस remembrance में हमारी साधना भक्ति करेंगे, third R है, ये तीन R's हैं, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, देन रेसिप्रोकेट। और जब रेसिप्रोकेट हम करना प्रारंभ करते हैं, तब फिर भगवान जो है वो अपनी स्पेशल मर्सी रिलीज करते हैं। हमारे मंदिर में पूर्ण चंद्र महाराज आए थे, अभी तो वो नहीं है, गुजर गए। तो वो बता रहे थे, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, तो ऐसे ही दिसंबर क्रिसमस मैराथन में वो बुक वैन लेकर अलग अलग अमेरिका के शहरों में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो और उनके एक पार्टनर, दोनों ब्रह्मचारी, बुक वैन लेकर अलग अलग शहरों में जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक जगह पर वो बहुत दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो थक गए थे, तो फिर वो वैन में ही सोते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम शाम के समय अब एक कोई ऐसी जगह पर वैन को पार्क करते हैं जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, और फिर हम लोग सुबह वहां से निकल लेंगे दूसरे शहर के लिए। तो वो लोग एक छोटी सी चोटी थी, पर्वत की चोटी, वहां पर गए, एक हिलॉक के ऊपर अपनी वैन को पार्क किया, और फिर सुबह वहां से निकलने वाले थे अपना चैंटिंग पूरा करने के लिए। वो वैन में बैठे रहे, बाहर ठंड थी तो अपना चैंटिंग कर रहे थे। होता क्या है, सुबह के समय ठंड का मौसम है, वैन के अंदर चैंटिंग, भीड़ भाड़ हाथ में लेते ही नींद आना प्रारंभ होती, तो थोड़ा नींद आ रही थी उनको, डुल्की मार रहे थे, झपकी आ रही थी। और उस टाउन के आसपास पुलिस जो थी वहां की, जो लोकल, जो उनकी काउंटी पुलिस, वो एक सीरियल किलर को लोग ढूंढ रहे थे। पिछले एक महीने से वो एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे थे, और जो उनको लीड्स मिले थे उस किलर को पकड़ने के, जो उसके वैन का डिस्क्रिप्शन था, सेम ये डिवोटीज के वैन का डिस्क्रिप्शन भी वही था। तो अब वो उनकी पुलिस हेलीकॉप्टर वगैरह इन सब से उन्होंने लोकेट किया कि सेम डिस्क्रिप्शन की वैन यहाँ पर आइसोलेटेड एरिया में एक पर्वत की चोटी पर पार्क है। तो तुरंत वहां का शेरिफ, काउंटी पुलिस, एफबीआई, स्वाट, सब लोग वहां पर आ गए। तो हेलीकॉप्टर और वो पूरा एफबीआई का टीम और उनके सारे वैन्स, पुलिस वैन्स, और अनाउंसमेंट करते हुए वहां पर पहुंच गए। और यहाँ पे हमारे दोनों डिवोटी, वो लोग कोई अंदाजा नहीं है उनको, वो लोग मस्त सोए हुए हैं अंदर, गुड बैग हाथ में लिए, और यहां पर पूरा घेराव कर लिया इन पुलिस ने। और फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो उसमें से जो शरीफ था, फिर वो धीरे धीरे उसने हिम्मत करी और वो गया, देखा अंदर, ये अजीबो गरीब सर मुंडवाए हुए, इधर तिलक और पीछे शिखा, ये क्या पहने हुए, कौन है ये लोग। उसने कहा ये तो कोई डिस्क्रिप्शन अपने सीरियल किलर का नहीं लग रहा है, ये तो उससे भी डेडली लग रहे हैं। तो वहां पर उसने फिर नॉक किया वो विंडो के ऊपर वैन के, ये लोग उठे, देखा तो बाहर पूरा एफबीआई और पूरा शेरिफ का, पूरा काउंटी पुलिस, सब लोग वहां पर हैं। तो बाहर आए, ले व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग हियर, हु आर यू। तो ये लोग बोले, अभी तुरंत 5 मिनट में कैसे समझाएं कि क्या इनके जीवन के साथ हुआ है, क्या इनको समझ में आएगा, और कंफ्यूज हो जाएंगे। वी आर हरे कृष्णा, वी आर सिंपल हरे कृष्णा, वी डिडंट डू एनीथिंग, वी डिडंट स्टील, वी डिडंट डू एनीथिंग, व्हाई ऑल ऑफ दिस। यू आर हरे कृष्णा, ओह या, आई हैव सीन दिस हरे कृष्णा जंपिंग, चैंटिंग, यू नो दैट सॉन्ग ऑफ योर्स, बट व्हाट आर यू डूइंग हियर ऑन दिस हिल, इस वैन के अंदर क्या कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सम अदर टाउन, वी वर डूइंग अवर चैंटिंग, यू वर स्लीपिंग, I was knocking on your window for 5 minutes. You both were sleeping. See, we are having our rosaries. वो दिखाया कि ऐसे chanting beads हैं. Sorry, sorry, सो रहे थे. Why were you sleeping? You are supposed to chant. Why are you sleeping? तो जो भी कुछ उनका वार्तालाप हुआ, तो पूर्णचंद्र महाराज बता रहे थे. वो बोल रहे थे reciprocation पर, ये मेरे को किस्सा याद आया. वो बोल रहे थे कि जब कोई भक्त भगवान का जप प्रारंभ करता है, यदि वो सो भी जाए अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन वैन में, यदि वो सो भी जाए, तो भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उन भक्तों को उठाने के लिए पूरी एफबीआई भेज रहे हैं। पूरा वहां का शरीफ, काउंटी पुलिस, एफबीआई, स्वाट, पूरे टीम को भेजा, मेरे ये दोनों सो रहे हैं जब में, उठाओ उनको जाके वहां। तो वहां पे और कोई नहीं था उनको उठाने के लिए, तो भगवान ने ये अरेंजमेंट किया उनको उठाने के लिए। सो दिस इज हाउ, इफ यू टेक, जैसे भगवान कहते हैं, इफ यू टेक 1 step टुवर्ड्स मी, आई विल टेक हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स। और यहां पर वामन देव, अगर उनके स्टेप्स ले लिए वो, तो उनके तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं। तो यही हमारे लिए आसार हैं, हम राधा रानी की तरह इतने बड़े बलिदान को प्रदर्शित नहीं कर सकते, परंतु कम से कम यदि हम इन 3 R's को फॉलो करें, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड देन रेसिप्रोकेट, कृष्णा इज देयर टू हेल्प अस एट एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू ऑल वेरी मच, हरे कृष्णा। क्षमा करना, 10 मिनट ओवर टाइम हो गया। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।